ओम शांति। किसी एक सर्कस में एक व्यक्ति अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करता था। उसकी जो पत्नी थी उसको वो एक तख्ते पर खड़ा करता था और दूर से तीर चलाता था। वो तीर उसकी पत्नी को छूते हुए तख्ते पर चुप जाते थे, परंतु एक खरोच भी नहीं आती थी। कभी हाथ को छूते हुए, कभी सिर को छूते हुए, और यह अभ्यास उसका बहुत पक्का था। और ऐसे वो 30 तीर चलाता था और उसकी जो पत्नी जो सामने खड़ी रहती थी तीरों से गिर जाती थी, परंतु उसे एक खरोच भी नहीं आती थी। ऐसा उसका 30 साल का पक्का अभ्यास था। कभी कभार जब पत्नी के साथ थोड़ी सी कलह हो जाती थी तो सोचता था आज इसको मार ही दूं, परंतु शाम तक अपने आप को संभाल लेता और सब कुछ ठीक हो जाता। पर एक बार ऐसा जबरदस्त झगड़ा हो गया कि उसने इस बार ठान लिया कि ऐसा तीर चलाऊंगा सीधा छाती भेद देगा। तो वो ये सोचता है कि हर बार आंखें खोल कर तीर चलाता हूं और अभ्यास इतना पक्का है आंखें खोल कर तीर चलाने का कि संभावना बहुत कम है उसे मारने की। तो वो आंखें बंद कर देता है और तीर चलाना चालू करता है। ऐसे 30 तीर चलाता है, सोचता है शायद आंखें बंद कर एक हाथ तीर तो लग ही जाएगा, क्योंकि झगड़ा बहुत जबरदस्त था उस दिन का। परंतु जैसे ही 30 तीर चलाने पूरे हो जाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट, वो आंखें खोल कर देखता है उसकी पत्नी को एक भी तीर नहीं लगा, क्योंकि अभ्यास बहुत गहरा था। आंखें बंद कर भी वो अभ्यास कर पाया। वो अभ्यास इतना गहरा था कि अवचेतन मन में समा गया था। और ऐसा कोई भी अभ्यास हो सकता है। और आत्मा को भी ऐसा एक अभ्यास है जो उसने जन्म जन्म किया है कि आंखें बंद कर भी होता है वो। और वो अभ्यास है भक्ति का अभ्यास। आत्मा ने जन्म जन्म क्या किया है, भक्ति की है, मांगा है, पुकारा है, चिल्लाया है और उसी में वो भावुक रही। और ऐसी भावुक आत्मा, ऐसी भक्त परायण आत्मा, भक्ति परायण आत्मा जब ज्ञान में आ जाती है तो भक्ति का वो अभ्यास पक्का बहुत है, ज्ञान में भी चलता है। इसके लिए ज्ञान के इस शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, जो कि पहले शिव की भक्ति करते थे, अब शिव बाबा की भक्ति करते हैं, जो कि पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, अब मन ही मन मांगते हुए शिव बाबा की पूजा करते हैं, शायद कुछ दे दे, मेरे पति के बुद्धि का ताला खोल दो, बच्चे ज्ञान में आ जाए, थोड़ा कुछ ये दे दो, थोड़ा वो दे दो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ वैसा कर दो। भक्ति अभी भी जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि अभ्यास बहुत पुराना था, है। उस व्यक्ति का अभ्यास 30 साल का था, सर्कस के उस व्यक्ति का अभ्यास 30 साल का, जिससे वो आंखें बंद कर भी तीर चलाए, परंतु उसकी पत्नी को एक भी तीर नहीं लगा। हमारा अभ्यास कितने साल का है? 2500 साल का है। 2500 साल का पुराना अभ्यास, और अचानक भगवान मिल जाए तो खत्म हो जाएगा? तो कल की अव्यक्त वाणी किस बात पर थी? बाबा दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। ये दो प्रकार कौन सी आत्माएं थी? जो यहां बैठे हैं वो, और जो ज्ञान में नहीं है वो। इन दो प्रकार के बच्चों की बातें चल रही थी, या इसी सभा में दो प्रकार के बच्चे बैठे थे? इसी सभा में, इसी ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, जो अभी भी अपनी भक्ति करते रहते हैं। तो बाबा ने दो प्रकार की आत्माएं देखी। एक तो वो जो भावुक है, सेंसिटिव नेचर, संवेदनशील, और दूसरी आत्माएं हैं जो यहां पहुंची है और जिन्होंने जाना है और जिन्होंने पाया है, ऐसी ज्ञानी तू आत्माएं देखी। ये दो प्रकार के डिवीजन, दो श्रेणी आत्माओं की, और उनकी ढेर सारी निशानियां सुनाई, और फिर प्रश्न पूछा कि इनमें से स्वयं को पूछो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, भक्त भावुक आत्मा हूं या फिर ज्ञानी तू आत्मा हूं। भावना बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है, और जहां भावना होती है अपने आप सब कुछ हो जाता है। ये भक्ति के शब्द है, भावना, श्रद्धा, विश्वास, बड़ी गहरी चीज है ये। और श्रद्धा तो बहुत गहरी चीज है, विश्वास तो भी सतही है, परंतु श्रद्धा अतल है, गहराई में है। भगवान विरोध नहीं कर रहा है भावना का, भावना का भाड़ा देने तो आता है, परंतु केवल भावुक होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में बहुत विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएगी, समस्याएं आएंगी, उन सब का सामना करने के लिए केवल सेंसिटिव रिसेप्टिव बनने से काम नहीं चलेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा, भावना के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ पावर भी चाहिए, नहीं तो बार बार उदास होना पड़ेगा, बार बार दुखी होना पड़ेगा, ढेर सारी अपेक्षाएं होगी, एक्सपेक्टेशंस होगी, और वो जब फुलफिल नहीं होगी तब फिर मन उदास निराश हो जाएगा। 1990 के दशक में पश्चिम जगत के दो मनोचिकित्सक, जो कि युगल थे, पति पत्नी एरॉन, आर्थर एरॉन एंड इलाइनी एरॉन, उन्होंने एक मनोविज्ञान में नए शब्द का निर्माण किया था, HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन्स, और ऐसे लोगों का अध्ययन किया था कि जो बहुत सेंसिटिव है, जो बात बात पर डिस्टर्ब होते, बात बात पर रोते, बात बात पर आंसू आ जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उदास, किसी ने कुछ बोल दिया नाराज, किसी ने कुछ कह दिया रूठ गए, रूठना रूसना, थोड़ी सी बात से डर जाना, बहुत सेंसिटिव, सनलाइट से सेंसिटिव, मौसम बदल गया सेंसिटिव, तुरंत बीमार, मन घबराहट, एंग्जाइटी, ढेर सारे प्रश्न हमेशा मन में। और उनके अध्ययन के अनुसार उन्होंने कहा था 15-20% लोग विश्व में ऐसे हैं उस समय 1990 के दशक में कि जो HSP है, हाईली सेंसिटिव पर्सन, अति भावना वाले, उनकी कुछ अच्छी बातें भी है, वो दूसरों का दुख ज्यादा समझ सकते हैं, परंतु खुद भी दुखी हो जाते हैं, छोटी सी बात उन्हें दुखी कर देती है, आंसू तो जैसे यहां पर रखे हुए हैं, बार बार बहते हैं आंसुओं की धारा है, कोई प्रेम पूर्वक प्रसंग देख लिया कि आंसू चालू, कोई दर्दनाक घटना सुन ली आंसू आना चालू, बाबा के प्यार में कुछ अनुभव हो गया आंसू आना चालू, उधर बेटे ने कुछ कह दिया तो भी आंसू आना चालू, हर बात में सेंसिटिव है, अत्यंत संवेदनशील। संवेदनशीलता बहुत अच्छा गुण भी है, परंतु हाईली सेंसिटिव दोष है व्यक्तित्व का। और ऐसा व्यक्ति बार बार उदास होगा, उसकी बहुत सारी अपेक्षा है, हम वहां जाएं तो हमें सब कुछ मिलना चाहिए, हम वहां कहीं जाएं तो हमें वेट ना करना पड़े, सबसे पहले हमें लिया जाए, हर चीज में एक्सपेक्टेशन है, हम वहां जाएं तो हमें ऐसा कुछ सब कुछ मिलना चाहिए, अपेक्षाओं से भरा चित्त है जो कि बार बार निराशा की चट्टान से टकराता है, रोता है फिर। तो इस मुरली में बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे इसी परिवार के अंदर। कौन से दो प्रकार? एक तो वो जो ज्ञानी है और दूसरे वो जो भावुक है। और इनकी निशानियां सुनाई, और इनके अंदर जो समानता है और इनके अंदर जो असमानता है उसका भी वर्णन किया। तो ऐसी सात बातें अंतर की। ज्ञानी तो आत्मा क्या करती है और भावुक आत्मा क्या करती है? सबसे पहली बात, जो भावुक होंगे वो थोड़ी सी बात में खुश हो जाएंगे, यथाशक्ति खुशी ज्ञान प्रेम जो भी मिल जाए उसको ही बहुत समझ लेंगे। और भावुकता के लिए बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग की भावुकता एक है, एक ज्ञान मार्ग की भावुकता है, और दोनों भावुकताओं में ज्ञान मार्ग की भावुकता श्रेष्ठ है। बाबा हमेशा माताओं का वर्णन करते हैं कि माताओं में भावना बहुत है, इसके लिए बाबा के यज्ञ की सेवाएं भी बहुत करती है। ये ज्ञान की भावुकता है, एक दूसरी भावुकता है भक्ति की भावुकता। और उसके विषय में तीन शब्दों का प्रयोग बाबा ने किया, कौन से? भक्ति की भावुकता अंधश्रद्धा की भावुकता है, भक्ति की भावुकता इनडायरेक्ट है, और भक्ति की भावुकता स्वार्थ वाली भावुकता है। भावुकता तो बहुत है परंतु स्वार्थ है। मंदिर का एक पुजारी रोज मंदिर में जाता है, पूजा करता है, 10 मिनट में पूजा पूरी कर देता है, परंतु आज मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन है, जश्न है, हजारों लाखों भक्त आए हैं, आज 1 घंटा हो गया फिर भी पूजा अभी भी चालू ही है, अभी भी पूजा रोकता नहीं है, यहां वहां से हाथ घुमाना चालू ही है ऐसे ऐसे करते हुए। और आज तो ऐसा प्रभु प्रेम उमड़ पड़ा है कि आंसू नहीं रुक रहे उसके, उन्माद, ईश्वरीय प्रेम, परंतु रोज रोज ऐसा कुछ नहीं होता है, रोज 10 मिनट में पूजा पूरी हो जाती है। आज ऐसा प्रभु प्रेम कहां से उमड़ पड़ा? क्योंकि देखने वाले लोग बहुत है, और जहां देखने वाले होते हैं वहां पर बहुत कुछ किया जाता है। ऐसा ही वर्णन लंदन की एक शहर में बहुत समय पहले का है। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि मैं आपके चर्च में आ रही हूं। एक दिन भीड़ लग गई लोगों की, उस दिन इतनी भीड़ लग गई, जब वो क्वीन आई, रानी ने देखा मेरे देश के लोग इतने भक्त, इतने श्रद्धालु, उसे बहुत खुशी हुई। मंदिर के पास चर्च के पादरी ने कहा, लोग तो सुबह से फोन कर रहे, पूछ रहे हैं कि सही में आने वाली है ना, तो हम आएंगे। दिखा पाए एक्सिबिशन। तो भक्ति मार्ग की जो भावुकता है, अंधश्रद्धा की भावुकता है, दूसरा इनडायरेक्ट है, और तीसरा स्वार्थ है उसमें। और ज्ञान की जो भावुकता है वो अंधश्रद्धा वाली नहीं है, अंधविश्वास वाली नहीं है, सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम है बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, मधुबन के प्रति, दादियों के प्रति, ब्रह्मा मम्मा के प्रति, एडवांस पार्टी की उन आत्माओं के प्रति, निमित्त टीचर बहन के प्रति, सभी के प्रति भावना है। और जब कभी इनमें से कोई एक भावना को ठेस पहुंचती है तो बड़ा दर्द होता है। शिव बाबा के प्रति, मम्मा बाबा के प्रति, दादियों के प्रति, मधुबन के प्रति, यज्ञ के प्रति, सेवा केंद्र के प्रति, सेवा केंद्र की निमित्त बहन के प्रति, वरिष्ठों के प्रति, सबके प्रति बहुत भावनाएं, शुद्ध भावनाएं होती है कईयों की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये भावना ही आगे बढ़ाएगी। परंतु ये भक्ति मार्ग जैसी अंधश्रद्धा वाली भावनाएं नहीं है, इसमें ज्ञान समाया हुआ है, ज्ञान युक्त भावनाएं हैं। और यदि किसी में यह भावनाएं ही नहीं तो शायद जीवन भी निरस है। भक्ति मार्ग में इतनी अंधश्रद्धा है कि लोग नास्तिक किस लिए बन गए? क्योंकि जब देखा ऐसा आडंबर, परंतु एक गलती हो गई वहां पर, जब लोगों ने देखा भक्ति मार्ग में इतनी अंधश्रद्धा है, तो भक्ति अंधश्रद्धा को तो छोड़ दिया, पर साथ साथ धर्म को भी छोड़ दिया, साथ साथ भक्ति को भी छोड़ दिया, साथ साथ प्रभु प्रेम को भी छोड़ दिया। ढकोसला है, आडंबर है, दंभ है, दिखावा है, हिपोक्रेसी है, रिजेक्ट कर दिया उसको और नास्तिक बन गया, आउट एंड आउट एथीस्ट। इसलिए धर्म का मर्म खो गया इन अंधश्रद्धाओं के कारण। ढेर सारी अंधश्रद्धा है भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा नहीं है, सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है। बाबा विश्वास श्रद्धा शब्द का प्रयोग न करते हुए निश्चय शब्द का प्रयोग करते हैं हमेशा, वो थोड़ा ज्ञान का अलग शब्द है, क्योंकि इन शब्दों की ज्यादा आदत है श्रद्धा, क्योंकि वो अंधश्रद्धा हो जाती है, फिर अंधविश्वास हो जाता है, ब्लाइंड फेथ। तो यह सबसे पहली बात, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात अंधश्रद्धा नहीं, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात स्वार्थ नहीं, और ज्ञानी तो आत्मा अर्थात डायरेक्ट भावना है जिसकी, इनडायरेक्ट नहीं है। यह सबसे पहला अंतर, स्वयं को शुद्ध भावनाओं से भरना है। और जितनी लिस्ट गिनाई, बाबा के प्रति भावना, मम्मा बाबा के प्रति भावना, यज्ञ की हर स्थान के प्रति, इस मधुबन के प्रति, और यज्ञ की जितनी भूमि है सभी के प्रति भावना, ये कौन सा स्थान है, कहां हम आए हैं, यहां की मधुबन निवासियों के प्रति भावना है, निमित्त आत्माओं के प्रति भावना है, इस यज्ञ में हमारा जीवन स्वाहा हो, ये भावना। भावनाएं जादुई है, तिलिस्म है, मिराकुलस है, और जिसकी जितनी भावना होगी वो उतना आगे बढ़ेगा। जिसको ये पता है कि आज की मुरली में ये जो वाक्य आया है ये भगवान ने कहा है, वो कहता है आज सुबह की साकार मुरली बाप तुम्हें अपना वायदा याद दिलाने आए हैं, जब तुम आओगे बाबा हम किसी को याद नहीं करेंगे, जब तुम आओगे हम सारे ममत्व को तोड़ देंगे, जब तुम आओगे हम सबको भूल जाएंगे, केवल तुझी को याद करेंगे, तेरा ही सुनेंगे और किसी का भी नहीं सुनेंगे। कितना अच्छा वायदा हमने भक्ति मार्ग में किया था, और बाबा कह रहे हैं मैं तुमको याद दिलाता हूं, केवल मेरा सुनो बस। मैं ये कहता हूं बस, यही सत्य है और इसके अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं। हमारे जीवन के सारे निर्णय इस बात पर आधारित हो कि ये उसने कहा कि नहीं कहा, वो ये कह रहा है। हमारे जीवन में यदि दुख है, दर्द है, पीड़ा है, शायद उसकी कही हुई कोई ना कोई बात का हम उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा किसी से भी प्यार नहीं रखो। कई है जिनका इधर उधर प्यार होता है, इसके लिए ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं, कुक्कड़ ज्ञानी है, बहुत बुद्धू है। एक जगह ये भी कहा त्रिकालदर्शी नहीं है, वो बहुत बुद्धू है। सबसे पहली बात, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात शुद्ध भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं, भावनाओं से परिपूर्ण है, परंतु सच्ची भावनाएं हैं, झूठी नहीं है, दंभ नहीं है, आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है, श्रेष्ठ है, महान है। तो यह सबसे पहली बात, ज्ञानी तो आत्मा और भावुक आत्माओं में अंतर। दूसरी बात, भावुक आत्माओं ने भी बाप को जाना है, पहचान बाप की भी है परंतु इनडायरेक्ट है, परोक्ष है। और जो ज्ञानी तो आत्मा है उन्होंने भगवान को जो जाना है डायरेक्ट, अपरोक्ष डायरेक्ट जाना है, यह अंतर है। और केवल जाना नहीं, जाना है, पहचाना है। और कैसा पहचाना है, तू जो है जैसा है और मैं जो हूं जैसा हूं वैसा पहचानना, अर्थात बाप समान बनना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। एक जगह अव्यक्त महावाक्य है, जब तुम स्वयं को संपूर्ण रूप से जान जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। प्रश्न है क्या मैंने अपने आप को जाना है, क्या हमने भगवान को जाना है, क्या भगवान के मन को, भगवान की भावनाओं को, भगवान के इस यज्ञ को क्या मैंने जाना है? और यदि जाना होता और यदि विश्वास होता तो शायद पुरुषार्थ वो ना होता जो इस समय चल रहा है। उस पुरुषार्थ में जो तीव्रता होती, जो गति होती, वो कुछ और होती। इसका अर्थ शायद जाना ही नहीं है। जैसे भक्त भक्ति कर रहे वैसे शायद हम भी पूजा अर्चना करते बैठ रहे हैं। ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात जिन्होंने स्वयं को जान लिया और भगवान को जान लिया, दोनों को जान लिया, इस परिवार को भी पहचान लिया, कौन सा ये परिवार है, या मन इस परिवार के प्रति मैला तो नहीं। यहां के लोग ऐसा क्यों करते हैं, बार बार यही प्रश्न तो नहीं है, क्यों इतने हिसाब किताब इन ब्राह्मणों के साथ, ये बार बार प्रश्न आता है। अर्थात ये नहीं जाना है कि ये प्रभु परिवार है, यहां की एक एक आत्मा को स्वयं उसने चुना है। तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात स्वयं को जानने वाली और भगवान को जानने वाली, सच्ची दिल से जानने वाली, सच्चे दिल से प्यार करने वाली। और भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हमें भारत के प्राइम मिनिस्टर को जानना है तो क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो कहाँ रहता है, उसका क्या स्थान है, उसके बारे में एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ पढ़ा है और एक है जो उसके साथ उसके घर में रहता है, किसने ज्यादा जाना? जो साथ रहता है, अगर भगवान को जानना है तो उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ उठना बैठना चलना सब कुछ उसके साथ हो, अनुभव हो कि मैं आत्मा, मुझ पर परमात्मा छत्र छाया है, जहां मैं हूं वहां वो है, ऐसी भावना, तो उसको जान पाएंगे। वो ज्योति बिंदु है, निरंतर उसके उस रूप का ध्यान करते रहना, निराकार, मैं भी निराकार, जैसे वो निर्मोह है मैं भी निर्मोह का सागर हूं, जैसे वो साक्षी है मैं भी साक्षी हूं, जैसे संसार से वो अनासक्त है मैं भी संसार से वैसा ही अनासक्त हूं, जैसे वो संसार से उपराम है मैं भी इस संसार से वैसे ही उपराम हूं, ये सारे संकल्प और उसके साथ रहना ऊपर जहां वो रहता है, तद्धामम परमम मम, जो उसका धाम है वही मेरा धाम है, जो उसका रूप है वही मेरा रूप है, नहीं तो संसार के दुख दर्द में डूबी रहती आत्माएं। सुबह की साकार मुरली, एकांत में जाकर क्या करो, विचार सागर मंथन करो, अंतर्मुखी हो जाओ, तो ही वो कौन है उसको जाना जा सकेगा। वो परम मौन है, मौन का सागर है, अकर्ता का सागर है, अभोक्ता का सागर है, निरहंकारिता का सागर है, वैसे मैं भी। तो ज्ञानी तो आत्मा का दूसरा लक्षण, स्वयं को जानेगा और उस परमात्मा को भी जानेगा, इस परिवार को भी जानेगा। तीसरी बात, एक है संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और दूसरा है वर्षे के अधिकारी। भावुक आत्माएं जो होगी वो वर्षे की अधिकारी होगी, और जो ज्ञानी आत्मा होगी वो संपूर्ण वर्षे की अधिकारी होगी। यहां बाबा ने कहा है, एक है राज अधिकारी, राज्य अधिकार में आना, राज तख्त के अधिकार में आना, एक है राज घराने के अधिकार के अधिकारी, तीसरा है राज घराने के संपर्क के अधिकारी। डिविजन से संपूर्ण वर्षा, वो वर्षा दूसरा जो सतयुग में होगा, अभी का वर्षा क्या है, अभी का वर्षा है खुशी। यदि अभी जीवन में खुशी नहीं है तो संपूर्ण अधिकारी नहीं है, यदि अभी जीवन में संपूर्ण प्यूरिटी नहीं है तो वर्षे के अधिकारी नहीं हुए, यदि अभी जीवन में आनंद नहीं संतुष्टता नहीं तो वर्षे के अधिकारी नहीं। तो ये तीसरा अंतर है। भावुक आत्माएं, भावना बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, परंतु कभी खुश है कभी खुश नहीं है, अभी अभी खुशी अभी अभी खुशी गुम। सुबह उठने के बाद ऐसा नहीं कह सकते कि शाम तक मैं एकदम खुश रहूंगा। अगर कोई पूछे क्या गारंटी देते हो लिख के कि शाम तक खुश रहोगे, अनप्रिडिक्टेबल है, कहा ही नहीं जा सकता कि खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि हलचल इतनी ज्यादा है, अंतर मन हलचल से भरपूर है। तो तीसरी निशानी है वर्षा। चौथी निशानी, दोनों भी कहते हैं मेरा बाबा, परंतु कहने में अंतर है। वो भी कहता है मेरा बाबा जो भावुक है, परंतु मेरा बाबा भी कहते हैं, परंतु जब विघ्न आता है तब क्या, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, सारे प्रश्नों की लड़ी लग जाती है। माया का सामना नहीं कर सकते, शक्ति कम है, प्रेम बहुत है, शक्ति कम है, पर सेंसिटिविटी बहुत है और वो अच्छी भी है, परंतु वो सेंसिटिविटी उसको दुखी भी कर देती है। और इस ज्ञान मार्ग में अति संवेदनशील होना अर्थात मृत्यु, यहां तो बहुत कुछ सहन करना है, ढेर सारे हिसाब किताब सामने, शरीर के ही ढेर सारे हिसाब किताब आएंगे, दूसरी आत्माओं से ढेर सारे हिसाब किताब आएंगे, परिस्थितियों के द्वारा हिसाब किताब चुकते होंगे। और वहां पर यदि कोई सेंसिटिव हो जाए और कोई दुखी हो जाए, नाराज हो जाए, उदास हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया नाराज, किसी ने हमारी बात नहीं मानी उदास, दूसरों के बोल और व्यवहार हमें डिस्टर्ब न करे, दूसरों के बोल और दूसरा व्यवहार, ये दो ही चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। किसी ने ठीक से बात नहीं की, ठीक से व्यवहार नहीं किया, डिस्टर्ब। तो क्या डिस्टर्ब होना ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है या भावुक आत्मा की निशानी है? रोते रहना, तीन दिन बात ही नहीं करना, ये भावुक आत्मा है, आत्माओं की निशानी है, इसमें कोई उन्नति नहीं होने वाली। यहां तो सहज लेना, मनोरंजन समझ कर आगे बढ़ना, सीखते जाना चीजों से, वस्तुओं से, घटनाओं से, व्यक्तियों से, और आगे बढ़ते जाना है। दुखी होके बैठ नहीं जाना है कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है, मेरा बाबा तो कहते हैं, परंतु वो दिल से कहते हैं और उस मेरा बाबा कहने में अचल अडोलता है, ये दोनों का एक अंतर। अगला अंतर है नशा। दोनों ही आत्माओं को बहुत नशा है, भावुक आत्मा भी सुध-बुध भूल जाती है बाबा की याद में, ऐसी लगन है। परंतु फिर से वही पॉइंट बाबा ने रिपीट की, माया आई डिस्टर्ब, विघ्न आया डिस्टर्ब, सब चला गया। जब ज्ञान में आए थे, ऐसा नशा, ऐसा नशा, बहुत भावनाएं, बहुत भावनाएं, ये साक्षात्कार, वो साक्षात्कार, और अभी सीधा विकारों की दलदल में फंसे हैं। कई सारे आत्माओं के ये अनुभव है, कहां तो एकदम ऊंचे थे वैकुंठ रस, अभी चकनाचूर। तो नशा तो हो, परंतु ज्ञान युक्त नशा, केवल भावना वाला नशा नहीं। अगली निशानी जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, वो बाप के साथ रहेगी, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान है। उनका वो गीत नहीं होगा, क्या करूं, कैसे करूं, ये हुआ वो हुआ, ये गीत तो भावुक आत्माओं के है। भगवान का साथ शक्तिशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है। भावुक आत्माएं अल्पकाल के लिए भगवान के साथ का अनुभव करती है, हमेशा नहीं। जब मधुबन में आ गए बहुत उड़ जाते, यहां से वापस गए खलास, नशा खत्म। फिर आज की मुरली में भी अगर शाम को पूछे कोई क्या था, कुछ पता नहीं, चिंतन किया टाइम नहीं मिला, फिर कह रहे हैं कि ये कौन कह रहा है मुरली में जो कुछ आ रहा है, बाप तुम्हें अपना वायदा याद दिलाने आए हैं, तुमने जो वायदा किया था, ज्ञान गंगाए हो, तलवार में क्या भरना है, जौहर, बिना तलवार में जौहर भरे कुछ नहीं होगा। योग का बल चाहिए, पावर चाहिए, केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा, केवल कोरा ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होगा, शब्दों में प्यूरिटी का बल योग से आएगा, तपस्या से आएगा, एकांत में की हुई तपस्या, मौन में की हुई तपस्या, शरीर से कितना हम डिटैच है उसमें उससे बल आएगा। उस बल को अंदर भरना है। आज बाबा ने गुरु गोविंद सिंह की तलवार को भी याद किया है। दो तलवारें थी, एक तो लंदन के म्यूजियम में चली गई और एक क्वीन विक्टोरिया को भेंट कर दी थी। वॉर बूटी, वो युद्ध की लूट। कई प्रयत्न किए गए भारत लाने की, अभी तक आई नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन पूरा लगा दिया उसके रिसर्च में कि वो कहां चली गई तलवार, गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार, पर अभी तक नहीं आई है। 1853-55 से जो भारत से गई अभी तक वापस नहीं आई है। तो योग का जौहर, सातवीं निशानी, जो ज्ञानित आत्माएं होगी उनको हर शक्ति और हर गुण का अनुभव होगा, भावुक आत्माओं को नहीं होगा। भावुक आत्माएं केवल भावना में बह जाती है। शायद ऐसा भी हो सकता है अभी यहां है, कल कोई दूसरा मिल गया तो वहीं पे भी चली जाएगी। कोई कह दे कि मैं तुम्हारे पति की बीमारी ठीक कर देता हूं तो वहां चली जाएगी, कि यहां तो इस बाबा ने नहीं किया उस बाबा के पास चलो। भावना बदलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। अति भावुक जैसे एक सूफी संत होता है, एक बंजारा उसकी बहुत सेवा करता है, तो सूफी संत इतना खुश हो जाता है कि जाते जाते उसे एक गधा देकर जाता है बंजारे को, और बंजारा बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि अब बहुत सारा काम वो गधा करने लगता है, बहुत सारा सामान गधे पर लाद कर लेके जाता है, उसका आधा काम पूरा हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो गधा बीमार पड़ता है और मर जाता है, तो उस बंजारे को बड़ा दुख होता है, मेरा इतना प्यारा गधा, इतनी सेवा करता था, सोचता है मैं इसकी कब्र बनाऊंगा, और उसकी कब्र बनाता है और कब्र बनाते हुए रोने लगता है। वहां से एक राहगीर गुजरता होता है, उसको लगता है शायद कोई महान आत्मा की कब्र है, तो वो पैसे फेंकता है। इस बंजारे को अंदर से हंसी आती है कि यह गधे की कब्र है, पर वो क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तो वो भी ठीक कुछ नहीं कहता है। और फिर ये भी सोचता है ये तो धंधा बड़ा अच्छा है। फिर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं रोज, और गांव में खबर फैलती है कि कोई महान आत्मा की समाधि है बाहर, गांव के बाहर, और रोज उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। और धीरे धीरे वो बंजारा बहुत अमीर बन जाता है, क्योंकि लोगों की भावना इतनी जुड़ जाती है कि जो भी गांव से कहीं बाहर जाएगा उस पुण्य महान आत्मा की समाधि और कुछ ना कुछ तो चढ़ाकर जरूर जाएगा। एक बार वो सूफी संत जिसने गधा दिया था उस गांव में आता है, और गांव वाले कहते हैं आप हमारे गांव में आए, बाहर एक महान आत्मा की समाधि है, उसको दर्शन दिए बिना जाना नहीं आप लिए बिना। तो वो कहा अच्छा, और वहां पहुंचता है तो देखता है ये तो वही बन जा रहा है। वो कहता है तुम इतने अमीर हो गए? वो कहता है बस आपकी ही कृपा है। कैसे? आपने जो गधा दिया था, अब आपके आपसे क्या छिपाना, आपका ही गधा था। आपने जो गधा दिया था वो जब मर गया तो मैंने कब्र बनाई, और धीरे धीरे इतना बिजनेस बढ़ गया कि मैं धनवान हो गया। तो वो सूफी संत खिलखिलाकर हंसता है, ये पूछता है आप क्यों हंस रहे हो? वो कहता है क्या तुम्हें पता है जिस गांव में मैं रहता हूं और मैं संत कैसा बना, वो भी एक महान आत्मा की समाधि वहां पर है, और वो इस गधे की मां है। वो जब मरी उसके आधार से मैं इतना अमीर बन गया। तो ये ऐसा अंधश्रद्धा में चलने वाला समाज है, जहां कुछ दिखा समाधि विमाधि चले उसके पीछे। ये भक्ति मार्ग यही करते आए हम भी, हनुमान की पूजा, गणेश की पूजा, और नए नए हर 100 किलोमीटर में भारत में पूछो ये किसका मंदिर है तो एक नाम बताएगा इसका है, वो कौन है, वो उसका अवतार, वो उसका अवतार, ऐसी पूजाएं चलती रहती है, अंधश्रद्धाएं चलती रहती है, और धर्म के पंडित और धर्म के ठेकेदारों का बिजनेस भी बड़ा अच्छा चलता है, शोषण करके, भावना का शोषण करके, लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स, और हम भी यही करते रहे। परंतु ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ नहीं है। और ये जो सातवीं पॉइंट बताई, इसमें बाबा ने तीन उदाहरण दिए हैं, एक सतयुग का, एक द्वापर का और एक शास्त्रों का, तीन उदाहरण। किस बात को समझाने के लिए कि तुम कौन हो? वो आत्माएं हो जो शक्तियों का और गुणों का अनुभव करती है। सबसे पहला उदाहरण सतयुग का। जैसे सतयुग में दास दासियां होती है, क्या करती है वो, आगे पीछे घूमती है, उसी तरह जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होगी, गुण और शक्तियां उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसकी जैसे कि सेविकाएं हैं। जितने गुण हैं और जितनी शक्तियां हैं उनके ऑर्डर प्रमाण चलेगी, जैसे दासियां है वो। जब जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति का आह्वान और वो आ जाएगी, जब जिस गुण की आवश्यकता है उस गुण का आह्वान और वो गुण आ जाएगा, उन्हें निरंतर नशा रहेगा कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। तो जैसे कितना सुंदर उदाहरण है स्वराज्य अधिकार को समझाने के लिए, या ज्ञानित्व आत्मा की परिभाषा के लिए। जैसे सतयुग में क्या होते हैं, दास दासी होते हैं, वैसे गुण और शक्तियां यहां हमारी दास दासियां बन जाएंगी। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण द्वापर युग का। जैसे द्वापर में कोई राजा होता है और कमजोर राजा होता है तो प्रजा क्या करेगी, उस पर शासन करेगी, और कोई कोई राजा बहादुर राजा होते हैं तो वो अपनी प्रजा पर शासन करेंगे। तुम स्वराज्य अधिकारी हो, तुम्हें अपनी इंद्रियों पर शासन करना है, इंद्रिय जीत बनना है। और इंद्रिय जीत कैसे बना जाता है, ज्ञान से। ज्ञान से इंद्रियों को वश में करना है, ज्ञान की विस्मृति अर्थात इंद्रियों के वश होना, क्योंकि इंद्रिय अपने आप में कुछ भी नहीं है, इंद्रिय निर्दोष है। लोगों ने इंद्रियों को काट दिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। इंद्रिय इनोसेंट है, पाप रहित, उनका क्या दोष, आंख फोड़ दी, आंखों का क्या दोष, वासना मन में आती है, इंद्रियों में नहीं। मन को निर्वासना में ले जाना, मन को निर्विकार में ले जाना, इंद्रिय स्वतः ही शांत हो जाएगी। इंद्रिय तो झरों के मात्र है, यंत्र मात्र है, ऑपरेट करने वाला कोई और है। यदि आत्मा, जैसे आज की सुबह की मुरली, फिर वही बात जो बाबा ने कही, बाप तुम्हें अपना वायदा याद दिलाने आते हैं, तुमने वायदा किया था बाबा हम केवल आपसे ही सुनेंगे। जब आत्मा किसी और से सुनने लगती है या आत्मा कुछ और देखने लगती है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, तब वासना प्रवेश होती है और तब इंद्रियों में चलन हलचल होती है और तब पाप के वश होती है व्यक्ति आत्मा। तो उदाहरण दिया द्वापर युग के बहादुर राजाओं का। बहादुर राजा अर्थात जिस समय जिसको ऑर्डर दिया, बाबा ने एक उदाहरण दिया, कोई सेवाधारी है, वो टाइम पर उसको सेवा के लिए बुलाया और वो आए नहीं तो उसको क्या सेवाधारी कहेंगे? कोई ना कोई कारण देते, बहानेबाजी, कारण को निवारण करो, ये भी कहा था नीचे शांतिवन में, कारण देते रहे बस, तो क्या उसको सेवाधारी कहेंगे? नहीं। तो ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण कौन सा था, कौन बताएगा? स्वराज्य अधिकार की बात समझाने के लिए तीन उदाहरण थे, तीसरा शास्त्रों में कौन सा? बाबा ने कहा तुम ड्रामा दिखाते हो ना, रावण क्या करता है, ललकार करता है अपने साथियों को बुलाने के लिए, वैसे तुम ब्राह्मण आत्मा है, तुम श्रेष्ठ आत्मा है, तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, शक्ति और गुणों को ललकार करो तो वो आ जाएगी, और जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो आ जाए। सहन करना पड़ रहा है, कोई हमें कुछ कुछ कह रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, मन कह रहा है कि उसका सामना करे, उसको भी वही सब कुछ कहे जो वो हमको कह रहा है, वहां पर आह्वान करना है सहनशीलता की शक्ति का, सहन शक्ति का, सहन करना पड़ रहा है जीवन में। ऐसी ऐसी परिस्थितियां है सामने कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता, ना कोई समझेगा। ऐसी परिस्थिति में सहनशीलता जैसे शक्ति है, जैसे शास्त्रों में दिखाया है, अर्जुन ऐसे हाथ करता है वो पशुपशास्त्र आ जाता है, ऐसे हाथ करता है वो ब्रह्मास्त्र आ जाता है, वो रहता नहीं है, आह्वान करते हैं वो लोग, अस्त्र शस्त्र कहते हैं उसको, अस्त्र और शस्त्र, आह्वान करो कि वो आ जाए, और फिर संधान, शक्तियों का आह्वान करना, कितनी अच्छी बात है कि हे सहन शक्ति आजा, आ जाएगी, और फिर प्रयोग करना, और अपनी और दूसरों की सेवाओं में लगाना, ये भी कहा बाबा ने, शक्तियों का प्रयोग। तो स्वयं को भूलने नहीं देना है कि मैं कौन हूं, ये याद रहेगा तो स्वतः ही सब याद रहेगा, मैं महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपने अवचेतन मन तक इसको समाना है, जैसे एक शेर होता है और एक गधा आता है और गधा उसको चुनौती देता है लड़ने के लिए, तो शेर पतली गली से सरक कर निकल जाता है। एक लोमड़ी मिलती है, वो कहती है अरे तुम शेर होके गधे की चुनौती तुमने स्वीकार नहीं की, लोग क्या कहेंगे, इतिहास क्या तुमको याद करे, कैसे याद करेगा, इतिहासकार तुम्हारे बारे में क्या क्या लिख देंगे, तुमने ऐसी कायरतापूर्ण काम किया। वो कहता है इसके कुछ कारण है, सबसे पहले तो यदि मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं तो अर्थात मैं भी गधा हूं, और यदि मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं तो मुझे अपने लेवल से नीचे उतरना पड़ेगा उसके लेवल पर, और फिर ही उससे लड़ाई करूंगा मैं, मुझे ये भूलना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं शेर हूं, नीचे उतरना पड़ेगा। अगली बात, यदि मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं ये तो निश्चित है कि मैं ही जीतूंगा और मेरी विजय होगी, तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा गधे से जीते तो इसमें महिमा की क्या बात है, इसमें मेरी क्या महिमा होगी कि मैं किससे जीता, गधे से, ये भी कोई बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर भूल चूक से ये गधा जीत गया तो सदा सदा के लिए मेरी बदनामी हो जाएगी। याद रखना मैं कौन, मैं अपने स्वमान में रहता हूं, मैं शेर हूं, गधों से उलझना मेरा काम नहीं है। ऐसी चीजें करनी ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं करना है अपने आप को जो डिस्टर्ब कर दे। सुमान, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं। गुण और शक्तियों का आह्वान करने का अभ्यास बार बार कहां करना है, दिनचर्या में। बहुत बेचैनी हो रही है अचानक से, मैं शीतला देवी हूं, शांत स्वरूप। क्रोध आ रहा है, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। विकार उत्पन्न होने की संभावना है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं प्रेम स्वरूप हूं। हे प्रेम की शक्ति आजा, आह्वान, आह्वान करना, बुलाना, इन्हीं शब्दों में बुलाना, हे हे सहन शक्ति कहां है, जल्दी आ, तेरी बहुत अर्जेंट जरूरत है, अगर तू नहीं आई तो झगड़ा हो जाएगा आज। तो आह्वान करना, तो ये सारी निशानियां थी ज्ञानी तो आत्मा की। और भावुक नहीं बनना, एक दूसरा पहलू है भावुकता का। एक तो बताया अंधश्रद्धा की भावनाएं, और दूसरा जो हमने चर्चा की अति सेंसिटिव होना, खुद को स्ट्रांग बनाना है। ये क्राइंग बिजनेस बंद करना है, बहुत रो लिए, छुई मुई, टच मी नॉट, फीलिंग देवी, हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल हमारे जेब में हो। हम डिसाइड करेंगे हमारा मूड कैसा रहे, मूड स्विंग्स ये ना हो। तो संवेदनशीलता तो ठीक है, परंतु ऐसी संवेदनशीलता नहीं जो हमें रुलाए दिन भर, सिक सिक झुक झुक मरमर। ये पाठ है इस यज्ञ का, जो जितना ज्यादा सहन करेगा वो क्या बनेगा, सहनशा, शक्तिशाली, पावरफुल। जिसने युद्ध के सैनिक, युद्ध में जितने घाव लगते थे बड़ी खुशी होती थी उनको, ये श्रृंगार था उनका, घाव उनका श्रृंगार। इस पथ पर भी हम भी रूहानी योद्धे हैं, बहुत घाव लगेंगे तो क्या रण छोड़ के भाग जाना है। जितने घाव लगेंगे उतने और शक्तिशाली बनेंगे। तो ऐसी ये सात निशानियां सुनाई, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला ज्ञानी तु आत्मा, अर्थात वो भक्ति वाली भावनाएं नहीं, अंधश्रद्धा की भावनाएं नहीं, इनडायरेक्ट भावना नहीं, ज्ञानी तु आत्मा अर्थात स्वार्थ वाली भावना नहीं, श्रेष्ठ ज्ञान की भावना है, ये पहली निशानी। दूसरी निशानी, भगवान को कैसे पहचाना है, डायरेक्ट पहचाना है, देवी देवताओं के द्वारा नहीं, डायरेक्ट मैं जो हूं जैसा हूं और तू जो है जैसा है वैसा जानने वाले, ये ज्ञानी तु आत्मा की निशानी है। तीसरा, संपूर्ण वर्ष के अधिकारी, आधा नहीं संपूर्ण वर्षा और अभी। चौथी निशानी ज्ञानी तो आत्मा की, मेरा बाबा, उनका ये मेरा बाबा कहना और भक्त वाली आत्मा का मेरा बाबा कहना, केवल भावुकता से कहना, इसमें बहुत अंतर है। मेरा बाबा कह भी रहे और रो भी रहे, ऐसा नहीं। पांचवा, पांचवी निशानी क्या बताई, नशा। उसके बाद में छठवीं निशानी, भगवान का साथ, और सातवीं निशानी, गुण और शक्तियां उनके ऑर्डर प्रमाण चलेंगे, आह्वान करेंगे, वो जैसा वो कहेंगे वैसा वो मानेंगी। ऐसी कैसी आत्मा है, ऐसी ज्ञानी तु आत्माओं को, ऐसी विजयी आत्माओं को, ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसी पूरी मुरली रिवाइज कराओ फटाफट, ऐसी नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसी दिल से मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को, ऐसी जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है, जान लिया है, ऐसी आत्माओं को, ऐसी संपूर्ण वर्षे की अधिकारी आत्माओं को, ऐसे जो भगवान के साथ रहती है ऐसी आत्माओं को, ऐसी गुण और शक्तियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली आत्माओं को, ऐसी किस समय किस शक्ति की आवश्यकता है उसी प्रमाण उसको प्रयोग करने वाली आत्माओं को, ऐसी स्वयं के प्रति अपनी शक्तियां लगाने वाली और दूसरों के प्रति सेवा में अपनी शक्तियां लगाने वाली आत्माओं को, ऐसी ज्ञानी तु आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।